आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दाना सरगर्मियां दरपर्दा जंग नहीं हैं, बल्कि भारत के खिलाफ जंग से मुतालिक मंसूबा बंद हिकमत अमली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 69 सरकर्दा शख्सियात को पद्म अवार्ड अता किए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई से 15 सितंबर कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ खित्तों में शदीद बारिश जारी रहने के सबब मामूल की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। आईएमडी ने 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 106% बारिश के अंदाजे के साथ मानसून के मामूल से ज्यादा रहने की उम्मीद है। इस पेशगोई से जरात और देही सतह गुजर बसर करने वालों को फरोग हासिल होगा। और भारत के गुलवीर सिंह ने जनूबी कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों की 10,000 रेस में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हालिया वाकयात से यह साबित हो गया है कि भारत के खिलाफ नामनिहाद दरपर्दा जंग असल में जंग से मुतालिक एक सोची समझी हिकमत अमली है। गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 6 मई के वाकयात के पेश नज़र भारत को दहशतगर्दाना सरगर्मियों का अब कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरहद पार से खुद इसका सबूत मिल गया है। वजीर आजम ने जिक्र किया कि जो दहशतगर्द हलाक हुए थे उनके ताबूतों को कौमी परचम में लपेट कर उन्हें पाकिस्तान में सरकारी एजाज दिया गया और पाकिस्तानी फौज ने उन्हें सैल्यूट किया।
जो आतंकवादियों के जनाजे निकले उस जनाजे को स्टेट ओनर दिया गया पाकिस्तान में, उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी, ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है।
ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि यह अपने असल दायरे कार से आगे बढ़ेगा, जो कौमी तरक्की के ताहयात अज़्म की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज एक फौजी इकदाम नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हर भारतीय शहरी पर आयद होती है। खुद किफालत की खातिर पुरजोर हिमायत के लिए वजीर आजम ने शहरियों पर जोर दिया कि वो रोजाना की बुनियाद पर अपने सामान की खपत का जायजा लें, गैर मुल्की अशिया की निशानदेही करें और उनकी जगह मकामी सतह पर तैयार की गई चीजें इस्तेमाल करें।
देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमें अपनी ब्रांड पर गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए।
जनाब मोदी ने कहा कि भारत किसी से दुश्मनी रखना नहीं चाहता और अमन से रहने का ख्वाहां है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की उमंगें इस तरह परवान चढ़नी चाहिए कि वो दुनिया की फलाह बहबूद में इश्तराक करें और हुकूमत करोड़ों भारतीयों की बेहतरी के लिए लगन के साथ काम कर रही है। इससे कबल वजीर आजम ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। पाकिस्तान की शह पर होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब करने की खातिर मुख्तलिफ ममालिक में आलमी रहनुमाओं, पार्लिमानी अरकान, दानिश्वरान, मीडिया और सिविल सोसाइटी के साथ भारत के कुल जमाती वफूद के बाद एक तबादले ख्याल के साथ दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के भारत के पैगाम से दुनिया वाकिफ हो रही है। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय झा की सरबराही में एक कुल पार्टी भारतीय वफ ने सिंगापुर के वजीर खारजा, अरकान पार्लियामेंट के ग्रुप, सनती चैम्बर के वफूद और मुल्क के कारोबारी रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू की। डीएमके की मेंबर पार्लियामेंट कनीमोजी की क्यादत में एक दीगर वफ ने लुबियाना में स्लोवेनिया की कौमी कौंसिल के सदर मार्को लोट्रिक से मुलाकात की और दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के भारत के पुख्ता आज़्म और ऑपरेशन सिंदूर के बाद नए नस्बुलेन से उन्हें आगाह किया। जनाब मार्को लोट्रिक ने कहा कि भारत एशिया में स्लोवेनिया के लिए सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा शराकतदार ही नहीं है, बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए एक इंतहाई अहम साझेदार भी है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बैजंत पांडा की सरबराई में एक और वफद ने कुवैत में आबाद भारतीय बिरादरी के ग्रुप से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो पैगाम वो लेकर आए हैं उसे पुरजोर अंदाज से पहुंचाया जा रहा है और उसकी बे इंतहा हिमायत की जा रही है।
Pakistan has misused the aid money it has received from IMF, from US, from Gulf countries, and instead of using it for development on the pretext of which they had taken it, they have used the money to foster terrorism. Now, countries have become aware of that. There should be strict scrutiny on Pakistan, including putting it back on the FATF lists.
बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की सरबराही में ग्रुप ने, जो कि फ्रांस में है, उसने पेरिस में फ्रांस के सहाफियों से गुफ्तगू की। जनाब प्रसाद ने कहा कि उन्होंने दानिश्वरों और फ्रांस में आबाद भारतीयों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना होगा और बिलाखिर दहशतगर्दी को हर सूरत में तर्क करना होगा। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा शहरी एजाजात से मुतालिक दूसरी तकरीब में 2025 के लिए 69 सरकर्दा शख्सियात को पद्म अवार्ड अता किए। इनमें से 3 शख्सियात को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 57 को पद्मश्री से सरफराज किया गया। भारत के साबिक चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को शहरी उमूर और फनून के शोबे में ग्राकद्र खिदमात के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि मुमताज फोक गुलकार शारदा सिन्हा को बाद अजमर्ग पद्म विभूषण अता किया गया। आकाशवाणी न्यूज ने पद्म अवार्ड हासिल करने वाली कुछ शख्सियात से गुफ्तगू की जिन्होंने इस सरकर्दा अवार्ड को हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। भारत के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस रिटायर्ड जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि ये उनके लिए बड़े एजाज की बात है।
इट्स एन एक्सट्रीम ऑनर एंड एन एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड, मतलब इससे ज्यादा ऑनर नहीं मिल सकता और इससे बड़ा मेरा ग्रेटिट्यूड नहीं हो सकता। मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरे को मिलने वाला है।
इससे कबल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुज़श्ता महीने शहरी एजाजात से मुतालिक पहली तकरीब में 2025 के लिए 71 सरकर्दा शख्सियात को पद्म अवार्ड अता किए थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दरमियाना दूरी के जदीद लड़ाका तैयारे AMCA प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस मॉडल का मकसद भारत की मुल्क में ही दिफाई सलाहियतों को बढ़ाना और लचकदार घरेलू खलाई सनती इकोसिस्टम को फरोग देना इस मॉडल का मकसद है। वजारत दिफा ने एक बयान में बताया कि इस एग्जीक्यूशन मॉडल से निजी और सरकारी शोबों दोनों में ही मुकाबला जाती बुनियाद पर बराबर मौके पैदा होंगे। इसमें कहा गया है कि कंपनी भारत की होनी चाहिए जो मुल्क के कवानीन पर अमल करे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। CBDT ने अपने बयान में बताया कि इस तोसी की वजह से ITR के फॉर्मों, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरियात और TDS के जमा कराने से मुतालिक अहम नजरसानी के सबब लोगों को मजीद वक्त मिल जाएगा। CBDT ने बताया कि इस तोसी से हर किसी को सही तरीके से इनकम टैक्स फाइल करने में आसानी होगी। इस तोसी से तवक्को है कि शराकत दारों ने जो खदशात जाहिर किए थे वो कम होंगे और रिटर्न फाइल करने के अमल में बेहतरी आएगी। दिल्ली सरकार ने आज 1984 सिख मुखालिफ दंगों के मुतासरीन के अहल खाना को मुलाजमतनामे तकसीम किए। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये मुलाजमतनामे तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की वजीर आला ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में दिल्ली हुकूमत ने 1984 सिख मुखालिफ दंगों के शिकार लोगों के 125 अहल खाना को ये मुलाजमतनामे दिए हैं।
कभी पिछली सरकारों ने ना कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए तो उन परिवारों से हमने नौकरियां देने का कार्य पूरा किया है।
रेलवे और जल शक्ति के मरकजी वजीर मम्लिकत V. Somanna ने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया को खत लिखकर रियासत के उस फैसले को वापस लेने के लिए कहा है जिसमें जन औषधि केंद्रों को बंद करने की बात कही गई है। उन्होंने ये कहते हुए फैसला वापस लेने की अपील की कि 15 साल से ज्यादा अरसे से जन औषधि केंद्र ریاست میں عوام کو کم قیمت پر دوائیاں اور سرجیکل آلات مہیا کرا رہے ہیں۔ اس فیصلے کو غریبوں کے خلاف بتاتے ہوئے مرکزی وزیر نے وزیر اعلیٰ سے دریافت کیا ہے کہ وہ اس بارے میں بتائیں کہ وہ کون سے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے ریاستی سرکار کو عوام کے خلاف اس طرح کا فیصلہ کرنا پڑا۔ مہاراشٹر کے کونکن، ودربھا، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ سمیت کئی علاقوں میں تیز بارش جاری ہے، جس سے وہاں کی عام زندگی پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ ممبئی میں گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں اور صبح سے رک رک کر بارش ہو رہی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے شہر اور اس کے مضافات میں آج گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی کی تھی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ 5 جون سے 30 ستمبر کے درمیان ملک میں اوسط سے زیادہ بارش ہونے کے امکانات 106% ہیں۔ مانسون کے بارے میں اس مثبت پیش گوئی سے اہم فائدے حاصل ہوں گے۔ اس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، آبپاشی کے نظام میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور دیہی زندگی کو مدد ملے گی۔ اس سے پانی کی حصولیابی بھی بہتر ہوگی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے عرضی سائنس کی وزارت کے سیکرٹری ایم روی چندرن نے کہا کہ شمال مغربی بھارت میں معمول کے مطابق بارش ہوگی، جبکہ شمال مشرقی بھارت میں معمول سے کم بارش ہونے کی توقع ہے۔ آئی ایم ڈی کے موسمیات شعبے کے ڈائریکٹر جنرل مرتنجے مہوپاترا نے بتایا کہ جون اور ستمبر کے مہینے کے درمیان اوسط سے زیادہ بارش ہونے کی توقع ہے۔
دیش کے لیے ایک خوشخبری ہے، برسہ سامانیہ سے زیادہ ہونے کا سمبھاونا ہے اور کوانٹیٹیولی 106% برسہ ہونے کا سمبھاونا ہے۔ 5 جون سے 30 سپٹمبر کا کیومولیٹو رین فال تو دیکھیں۔ سملرلی جون مہینے کی بات کریں، جون مہینے میں بھی ایبو نارمل رین فال ہونے کا سمبھاونا ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشنز بھی بلو نارمل ہونے کا سمبھاونا ہے۔
بھارتی بحریہ ناویکا ساگر پریکرما 2 کے عملے کا پرجوش استقبال کرے گا۔ اس عملے نے بھارتی بحریہ کے سمندری جہاز تارینی پر نصف کرہ ارض کا سفر کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ بھارتی بحریہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بہت کم کیے جانے والے اس طرح کے سفر میں لیفٹیننٹ کمانڈر روپا اے اور لیفٹیننٹ کمانڈر دلنا کے کا اہم کردار ہے اور وہ 29 مئی کو گوا کے ساحل پر پہنچیں گے۔ بھارتی بحریہ نے مزید بتایا کہ اس تاریخ ساز تقریب کی پرچم کشائی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ صدر ہوں گے اور یہ تقریب گوا کے مورموگاؤ پورٹ میں منعقد کی جائے گی اور اس تقریب کے ساتھ ہی نصف کرہ ارض کا یہ سفر باضابطہ طور پر ختم ہو جائے گا۔ روس کے وزیر خارجہ نے آج کہا کہ یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے ممکنہ امن معاہدے کے خدوخال کو ترتیب دینے کی خاطر روس ایک مسودے پر کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے بتایا کہ روس کے مسودے پر کام جاری ہے اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کو یوکرین کو سونپ دیا جائے گا۔ اس مہینے کے شروع میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فون پر بات چیت کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا تھا کہ روس مستقبل میں امن معاہدے سے متعلق مسودے پر یوکرین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایتھلیٹکس میں بھارت کے گلویر سنگھ نے جنوبی کوریا کے گومی میں ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 28 منٹ اور 38.63 سیکنڈ کے ساتھ پہلا مقام حاصل کیا۔ اس سے قبل سروین سیباسٹین نے ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے پہلا تمغہ حاصل کیا۔ سروین نے مردوں کی 20 کلومیٹر تیز چلنے والی دوڑ میں 1 گھنٹے 21 منٹ اور 13.6 سیکنڈ کے وقت ساتھ کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گردانہ سرگرمیاں درپردہ جنگ نہیں ہیں، بلکہ بھارت کے خلاف جنگ سے متعلق منصوبہ بند حکمت عملی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 2025 کے لیے 69 سرکردہ شخصیات کو پدم ایوارڈز عطا کیے ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 31 جولائی سے 15 ستمبر کر دی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے مختلف خطوں میں شدید بارش جاری رہنے کے سبب معمول کی زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ 106% بارش کے اندازے کے ساتھ مانسون کے معمول سے زیادہ رہنے کی امید ہے۔ اور بھارت کے گلویر سنگھ نے جنوبی کوریا میں ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کی 10,000 میٹر ریس میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔